हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज से श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के अंतर्गत पहले 10 श्लोकों में भगवान अपने मुख से अपने विषय में और अपने विषय में विशेष रूप से अवतार उनका और उनकी जो लीलाएं हैं जिसको जन्म और कर्म कहते हैं उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। और बहुत से भगवान के अवतार के समय के जन्म को और उनकी लीलाओं को दिव्य मानकर तपस्या करके पवित्र होके और तीन चीज़ों से मुक्त होकर भगवान के भाव को प्राप्त किया, मतलब प्रेम को प्राप्त किया। वो तीन कौन सी चीज़ें थी? राग, भय और क्रोध। राग होता है कर्मियों को, भय होता है ज्ञानियों को निराकार के कारण, और क्रोध होता है शून्यवादियों को। ठीक है, ये तीन आपने पढ़ा। और भाव की परिभाषा में भक्ति रसामृत सिंधु का जो भक्ति का क्रम है आदो श्रद्धा से लेकर वो सब देखा। ठीक है, आज हम दूसरा विभाग शुरू कर रहे हैं 11 से 15 तक। जो आपने दिव्य ज्ञान सीखा है उसको जीवन में कैसे उपयोग किया जाए, और पहला बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये यथा माम प्रवद्यन्ते तान स तथेव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का अर्थ है भगवान का चरण पकड़ना, उनके शरण में जाना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है तांस तथेव भजाम्यहम्, वैसे ही मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। जो जिस भाव से आता है वैसे मैं व्यवहार करता हूँ। और ये हो गया सिद्धांत। फिर मम वर्तमानो वर्तन्ते, सारा संसार मेरे को ही ढूंढ रहा है। कौन? मनुष्य पार्थ सर्वस्व, पार्श सभी सभी मेरे को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे भिन्न भिन्न रूपों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं संसार में। ये श्लोक अब गौरपूर्ण में आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना महाप्रभु श्री कृष्ण है स्वयं इस श्लोक को जब कहा कि मैंने गीता में कहा है, तो गोपियों ने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, मैंने कब उनको ऐसे वापस कैसे व्यवहार कब किया? मैं कृष्ण, मैंने ही तो ये सिद्धांत स्थापित किया थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, और मैं ही गोपियों का उत्तर तो दे नहीं सका। उन्होंने जिस प्रकार से मेरा चरण लिया वैसे तो मैं उनके साथ व्यवहार नहीं कर सका। तो चैतन्य महाप्रभु अवतार के समय संन्यास लेने के कारण में एक श्लोक ये है, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? घर गृहस्थी को छोड़ा, माता को छोड़ा, नवयुवक लक्ष्मी प्रिया को छोड़ा, विष्णु प्रिया को छोड़ा, क्यों? बोला गोपियों ने सब छोड़ा था, लोक लज्जा छोड़ी थी, गली गली में हाथ उठा के कृष्ण कृष्ण कह रही थी। तो वो भाव को एक श्लोक ये कारण देते हैं चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने का, कि मैंने स्वयं ने यह सिद्धांत स्थापित किया है तो मैं ही इसका उदाहरण बनूं ना पहले जाकर। और चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाते हैं कि भगवान जो आपके अनन्य भक्त हैं, जो आपके जन्म और कर्म को जानते हैं, वो तो आपके धाम में आएंगे, परंतु जो आपके जन्म को दिव्य नहीं मानते, आपके कर्म को दिव्य नहीं मानते, परंतु आपके ब्रह्म के ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, वेदों में जैसे आपका ब्रह्म ज्ञान है, उनका क्या होगा? तो उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि जिस भाव से जो आएगा उसको वो प्राप्त होगा। अगर वो ब्रह्म में, अगर वो कहते हैं कि मेरा शरीर नित्य नहीं है, भगवान कहते हैं, अगर वो कहते हैं मेरा शरीर नित्य नहीं है, मेरे कर्म नित्य नहीं है, तो फिर मैं उनको भी दोबारा नित्य कर्म, उनका शरीर भी ऐसा दूंगा जो नित्य नहीं रहेगा, जाए संसार में फिर जन्म ले, जब मुझे ही समझता है कि मरने जन्म लेने वाला हूं तो वो कहां से मुक्त होगा, तो वो भी जन्म मरण के चक्कर में घूमता फिरेगा। ये होगा किसके लिए? मायावादियों के लिए। लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं, जो मेरे ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं लेकिन परंतु मेरे जन्म और कर्म की अवज्ञा नहीं करते हैं और वो चाहते हैं मेरा ब्रह्म के अंदर लीन होना, उसको ब्रह्म में लीन करता हूं। जो कर्मी हैं, स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यज्ञेश्वर हूं, उनके यज्ञ का फल दे देता हूं। जो योगी हैं, वो सिद्धियां चाहते हैं, तो मैं योगेश्वर हूं, उनको योग की सिद्धियां दे देता हूं। तो जो जिस भाव से मेरे पास आता है उस वैसे उनके साथ मैं व्यवहार करता हूं। तो सारे श्लोक का भाव है ये। और जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, मेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं है और मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य मानता है, उसको मेरे धाम में, वो मेरे धाम में आता है। अब श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है सभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य होता है सभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ये जो तीसरी लाइन है उसका भाव है, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। इस लाइन को प्रभुपाद ने प्रथमता देकर लिखा है कि सारी मनुष्य कृष्ण के नाना, क्या लिखा है, नाना प्रकार के, क्या लिखा है, नाना प्रकार के किसको ढूंढते हैं, स्वरूपों को, मैनिफेस्टेशन लिखा, ठीक है, भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप शब्द ठीक नहीं है, भगवान के नाना प्रकार के, क्योंकि इसके नीचे वो नाना प्रकार में तीन शब्द लिखे हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो भगवान के, इसको कहा ऐसे जाए, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज मैनिफेस्टेशंस, उनके प्रकट्य के, प्रकट्य भी नहीं है, उनके प्रकट्य, मैनिफेस्टेशन का मतलब प्रकट्य के जो अलग स्तर है। और प्रभुपाद ने वो स्तर क्या है, कृष्ण ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, योगियों के लिए परमात्मा है और भक्तों के लिए भगवान है। वो जिस भाव से आएंगे उनको वो प्राप्त होगा। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, तो हरेक की जैसी इच्छा होती है वैसे व्यवहार भगवान करते हैं और वो संतुष्ट हो जाता है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं किस बात का, कि आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण जहां रहते हैं वहां कोई उसको कहता है मेरे बेटे हो तो उनके साथ बेटे का व्यवहार करता है, कोई कहता है सखा हो तो सखा का व्यवहार करता है, कोई कहता है स्वामी हो तो स्वामी का व्यवहार करता है, और कोई कहता है प्रेमी हो तो प्रेमी का व्यवहार करता है। ये प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के चार संबंधों का वर्णन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं इसी प्रकार से अगर कोई इस भौतिक जगत में भी जो हमारे संबंध है वो भगवान से जोड़ ले, इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होता है ना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, तो वो न तो असल में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और न ही असुरों का संहार करने के लिए आते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो केवल अपने चार प्रकार के प्रेम का प्रकाशन करके भक्तों को आकर्षण करने के लिए आते हैं, सखा, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य। कृष्ण के आने का एक ही उद्देश्य है, प्रेम, भक्तों को अपने पार्षद दाते हैं, उनके साथ अद्भुत व्यवहार, मित्रता का शत, माता पिता के साथ माता पिता का, सेवक के साथ सेवक का, प्रेमी का, ऐसा करते हैं कि सब कहते हैं हमारा ऐसा भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। और इस सिद्धांत को कहते हैं राग अनुगम मार्ग का शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो राग मार्ग का अनुशीलन कराने के लिए आते हैं, परंतु इस बार जब श्री कृष्ण के अवतार का समय हुआ स्वयं भगवान के, उसी समय चेतन चरितमृत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कहने के ऊपर धर्म की स्थापना और असुर संहार के लिए प्रार्थना की। तो वो जो अवतार होता है हमेशा विष्णु का, वो श्री कृष्ण में मिलके एक हो गया। तो जो असुर मारे वो सब मारे उस अवतार ने, वो कृष्ण ने मारे, जो चतुर्भुज में वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट हुआ था उसने मारे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने केवल दूध पिया, मक्खन चुराया और गोपियों के साथ रास किया, बस यही काम किया और कुछ नहीं किया। कृष्ण का अपना काम यही था। तो प्रभुपाद जी फिर क्या लिख रहे हैं देखो, शुद्ध भक्त यहां भी और आध्यात्मिक जगत में भी, यहां भी और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करके व्यक्तिगत सेवा कर सकते हैं और उससे दिव्य प्रेम के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ये इसको आप ऐसे समझें तो आप सबको एक उदाहरण याद होगा, भक्ति लता बीज वाला। तो भक्ति की लता का बीज है क्या? गुरु देता है भक्ति की लता का बीज कृष्ण की कृपा से, वो लता बीज क्या है? भक्ति की लता का बीज क्या है? हाँ जी बोलिए क्या? गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र देते हैं, वो तो साक्षात भगवान है, वो तो भक्ति का बीज नहीं है। भक्ति का बीज भगवान तो नहीं हो सकता। क्या देते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा किसी हद तक ठीक है, पहली श्रद्धा थी तब गुरु के पास आया, तो श्रद्धा तो पहले ही थी थोड़ी, आदो श्रद्धा है, श्रद्धा पहले है फिर गुरु के पास आया, ऐसे लिखा है ना, तो फिर श्रद्धा भी उसमें फिट नहीं हो रही है ना। संबंध देते हैं, अब चैतन्य चैतन्यमृत में क्या लिखा है? नेम, भक्ति के नेम, भक्ति के नेम, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ए सीड ऑफ डिवोशनल। चैतन्य चैतन्यमृत पढ़ना, भक्ति के नेम, नवदा भक्ति, चरवण कीर्तन आदि, ये भक्ति के नेम क्या करना है वो गुरु देता है, और उसको श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करना होता है, फिर अंकुरित होके लता ब्रह्मांड को भेदन करके और भगवान के चरणों को लपट जाती है और फल वहां देती है और सुख यहां मिलता है। इसका मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस जगत में भी रहते हुए अब हम कृष्ण के दास हैं तो यहां भी भगवान के सानिध्य का सुख ले सकते हैं, हम इधर रहते भी ले सकते हैं, उधर जाते के भी ले सकते हैं, ये दोनों बातें। तो भक्ति का बीज क्या है ये ध्यान रखना, हरे कृष्ण मंत्र भक्ति का बीज नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भक्ति का बीज है भक्ति के साधन, जो गुरु साधन भक्ति के 64 अंग भक्ति का बीज है देखा जाए, वो जो अंग जो साधन भक्ति गुरु सिखाता है वो असल में उसमें श्रद्धा है, दूसरी श्रद्धा, पहली वाली श्रद्धा नहीं, दो श्रद्धाएं, आदो श्रद्धा फिर साधु संघ, फिर एक और श्रद्धा आती है तब गुरु से दीक्षा लेता है, तो उसमें दूसरी श्रद्धा तो आई, श्रद्धा बिंदु गुरु दिया जब कहते हैं तो वो उस जगह ठीक है, वो भी है, मैं हम भी श्रद्धा कहते हैं, लेकिन वहां जो शब्द लिखा है चैतन्य चैतन्यमृत में, आप आज थोड़ा सा एक मिनट लगेगा ढूंढ लेना जहां ये श्लोक है श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में, 19वां अध्याय शायद मध्य लीला का 19वां मेरे ख्याल में, उसके लास्ट पार्ट में ये, उसको देख लेना वो शब्द को हिंदी में क्या है, पक्का करना भक्ति का बीज क्या है। माँ वो तो माली हो ये ब्रज करे और अरोपण श्रवण जल से आदि सिंचन करे, वो तो ठीक है, कूटनाटी ये उससे बचे फिर, पर बीज है क्या? प्रभुपाद के तात्पर्य में शब्द में लिखा है कि रूल्स एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर इज ए सीड। ठीक है, अब श्रीला प्रभुपाद जी इसके बाद लिखते हैं, जो निराकारवादी है वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनको वो मिल जाता है, परंतु वहां इतना अधिक सुख नहीं मिलता है और अपना व्यक्तित्व तो वो गंवाना ही चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं तो वो मिल जाती है, पर मायावादियों को नहीं मिलती, उनका तो पतन होता है। और फिर प्रभुपाद लिखा है कुछ तो ब्रह्म ज्योति में जाकर भी उनका वहां से पतन होता है, ऐसा श्लोक विश्वनाथ चक्रतिपाद ने लिखा है कि वहां से जाने के बाद भी भगवान के चरणों के अपराध करने के कारण पतन होना संभव। उसके उपरांत लिखा है कर्मियों को यज्ञेश्वर के रूप में और योगियों को योगेश्वर के रूप में फल देते हैं। तो जो भी साधन है वो श्री कृष्ण की ओर जाता है और कृष्ण वैसे ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और अंत में श्री प्रभुपाद जी इसी जब तक पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तब उसका अधूरा सब साधन अधूरे हैं। और फिर प्रभुपाद जी भागवत का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं अकाम आपको कोई कामना नहीं है, सर्व काम सब कामनाएं हैं कोई बात नहीं, या मोक्ष की कामना है उदार धी ही बड़े दिल वाले बनो, तीव्रेण भक्ति योगे न बड़ी तीव्रता से भक्ति योग का साधन अपनाओ, यजेत पुरुषम परम परम पुरुष की पूजा करो, चाहे इच्छा हो चाहे नहीं हो चाहे मुक्ति की इच्छा हो लेकिन जाओ भगवान के पास क्योंकि वही आपको फल देने वाला और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये श्लोक जो है इसमें कैसे भी भक्ति करो बिना भक्ति के न कर्म फल देगा न ज्ञान फल देगा न योग फल देगा, और भक्ति तो अपने आप में स्वतंत्र है, तो भक्ति सब में मिलेगी तब फल मिलेगा, इसलिए भक्ति तो करो ही करो चाहे इच्छा हो चाहे नहीं हो चाहे मुक्ति की इच्छा हो लेकिन भक्ति तो करनी है। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे श्लोक में। अब प्रश्न ये उठता है जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानते हैं वो तो भगवान के धाम में पार्षद बन जाते हैं, उदास्य भाव को सखा भाव को वात्सल्य भाव को माधुर्य भाव को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो वो मुक्त तो हो गए, पर कर्मी तो केवल वैकुंठ तक जाता है, वो भी केवल जाते हैं स्वर्ग तक या चंद्रलोक तक जाते हैं सुख भोग के वापस आते हैं, तो फिर भगवान अन्याय कर रहा है क्या? चक्रवर्ती पाद ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान फिर आप तो पक्षपात कर रहे हैं, तब भगवान ये श्लोक बोलते हैं मैं पक्षपात नहीं कर रहा, कांक्षति कर्मणां सिद्धिं यजन्ति इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा मतलब कर्म से जन्म लेने वाला, जा का मतलब जन्म, जैसे कोई और उदाहरण दो ऐसे जैसे कर्मजा ऐसे कोई और उदाहरण दो, अंडजा अंड से पैदा होने वाला, हाँ अंडे से पैदा होने वाला, स्वेदजा उद्भुज जा जा वाला एक और अच्छा उदाहरण कोई और दो, पंकज अंबुज अंबुज पंकज पानी में जा पैदा करने वाला, पंख का मतलब मिट्टी में पैदा होने वाला, तो ये ज का मतलब जन्म लेना, तो एक शब्द समझ में आ गया आपको कर्म जा कर्म से उत्पन्न कर्पण कर्म से उत्पन्न उसमें होती है सिद्धि, कर्म से उत्पन्न वाले फल में होती है सिद्धि, किसके लिए कांक्षते कर्म नाम सिद्धि, अपने कर्मों में सफलता चाहते हैं कर्म का फल चाहते हैं, जाते कहाँ हैं मेरे पास नहीं आते हैं, ये जनते ही ये देवता ये देवता का ये ई शब्द जहाँ भी आए देखो ई शब्द मिला आपको इसका मतलब इस धरती के ऊपर धरती के ऊपर। और प्रभुपाद ने इस ई शब्द से स्वर्ग के देवताओं को छोड़ के इस धरती के ऊपर मंत्री और जो राजनेता है ना उनका वर्णन ज्यादा किया है कि उनके चेले ज्यादा हैं। आज पहले लोग कहते हैं पहले लोग करते थे भगवान का भजन, वो जमाना चला गया, फिर लोग साधु संत ऋषि महात्मा उनके अनुयायी थे वो जमाना भी चला गया वो भी अच्छा था, उसके बाद लोग बहुत वीर पुरुषों के अन्यायी होते थे, भाई शिवाजी महाराज का महाराणा प्रताप सिंह हमारे ऐसे उनका वो हुआ करते थे, वो जमाना भी चला गया, फिर अभिनेता और अभिनेत्रियां वो उनका आइडल, और फिर खिलाड़ी क्रिकेट के, ये पतन कितना हुआ है लोगों के मानसिकता का, कितना नीचे पतन हुआ है। भगवान का स्मरण करने वाले उनके घर में पहले भगवान के फोटो थे अब जाके किसके फोटो जाके देख लो। तो यहां कहने का है कि इस धरती के ऊपर लोग ऐसे उनकी पूजा करने जाते हैं और उनसे लाभ क्या मिलना, लाभ से मिलना चाहिए कहीं से। तो ये कांक्षति कर्मणाम सिद्धिम और कांक्षति इच्छा करते हैं, कांक्षा का मतलब इच्छा करते हैं, और देवता के पास जाते हैं और तत्काल उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अभी भगवान फिर निष्काम कर्म की बात करते हैं। निष्काम कर्म का उद्देश्य क्या है? निष्काम कर्म का उद्देश्य है हृदय को साफ करना, अंतःकरण को साफ करना और ज्ञान के स्तर पे लाने के लिए तैयार करना। निष्काम कर्म योगी उसके अंदर हृदय जब शुद्ध हो जाएगा और दो चीजें आएगी ज्ञान और वैराग, तब उसका नाम होगा ज्ञान योगी। ये जो परिवर्तन होगा ना कर्म योगी से ज्ञान योगी में, इसमें हृदय शुद्ध होके दो चीजें चाहिए ज्ञान और वैराग, तब वो ज्ञान योगी कहलाएगा। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ऐसे निष्काम कर्म वाले भी यहां कम है। यहां तो सबको अपनी फल की इच्छा चाहिए, वो कह सबकी, ये भी बहुत कम है, निष्काम कर्म वाले भी बहुत कम है। यहां तो सब फल की इच्छा के लिए काम करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र आदि की, और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। और तत्काल इनको इच्छाओं का फल मिल जाता है। और अगर कोई मुक्ति चाहे, निष्काम कर्म करे, ज्ञान का अर्जन करे, आगे बढ़े, उसमें टाइम लगता है। इनको चाहिए जल्दी तत्काल। जैसे कोई कहे आयुर्वेद का इलाज करोगे तो 3 महीने चलेगा और डॉक्टर अभी दर्द की सुई लगाएगा तो अभी ठीक हो जाएगा, तो आजकल तत्काल वाले के पास सब जाते हैं और आस्ते काम वाले के पास नहीं जाते हैं। ये लोगों का विचारधारा ऐसे है। और उसका एक कारण बड़े से बड़ा क्या है, कोई एक कारण बताओ उसका क्या है? आज के आधुनिक युग में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब महीना एक डॉक्टर कहे कि आयुर्वेद वाला आराम करो तो वो खाएगा कहां से? उसको तो आज ठीक होना है, आज ही धंधा नौकरी करनी है, आज ही कमाना है, आज ही खाना है। ये लोगों की स्थिति है। 12 महीने का पहले घर में भोजन पड़ा होता था गरीब के भी, क्योंकि खेती करते थे। अब तो कोई खेती करता नहीं है, नौकरी करते हैं तो बेचारा क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है असल में। और यही लोग हैं ज्यादातर गुटखा खाते हैं। हम वो गाड़ी में बैठ के पदयात्रा की गाड़ी में मेले में जब जाते थे चरणामृत देते थे, सबके हाथ यहाँ गुटके वाले होते थे, सबके हाथ में गुटके कर जाते। तो हम पूछा एक से, आखिर ये सब लोग इतना नशा करते क्यों है, कभी सोचा है कि कारण क्या है इसका? कारण है परेशानी। सन जिंदगी में है परेशान, थोड़ी देर से परेशानी को भूलने के लिए कोई ना कोई व्यसन करते हैं। और प्रभुपाद ने ये कहां लिखा है 10वें श्लोक में, शून्यवाद के बाद लिखा है, किसी को याद है उसमें है, लिखा है कि नहीं? ऐसे लोग प्रायः नशे का सहारा लेते हैं, देखा था वहां, है ना, है ना, याद है? वो नशे का सहारा लेते हैं। और ये प्रभुपाद ने किसके लिए लिखे, विशेष लिखा है एपियों के लिए, जो वहां सब कुछ सुखी होते हुए, धनी परिवार के होते हुए, ये सिद्धांत ठीक नहीं, ये सिद्धांत ठीक नहीं, और फिर नशे में आध्यात्मिकता को ढूंढते हैं। और हमारे यहां जितने भी ये गरीब नशा कर रहे हैं ना, वो सिर्फ परेशानी के कारण कर रहे हैं। अगर उनको आवश्यकता है जिंदगी की, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सबको भगवान देता ही है, लेकिन भगवान की भक्ति सिखाई जाए तो सब छोड़ देंगे। अपने भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कह रहे थे कि हम जब आदिवासियों में प्रचार करना शुरू किया तो सभी नशा करते थे, कच्चा कच्चा शराब पीते हैं वो। तो लड़कों ने कहा इनको प्रचार कैसे करें, बोला आप कुछ नहीं करो, आप हरे कृष्ण जाके जपो, देखो इनमें परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये सरल लोग हैं, ये परेशानी के कारण ऐसे कर रहे हैं, आप इनको प्रसाद अच्छा मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, तो ये बोला बहुत बड़े लोगों के अंदर परिवर्तन आ गया। तो असल में ये लोग परेशान हैं। और ये प्रभुपाद जी का अमेरिका में उतरते ही पहला उन लोगों को देख के उनके रोग को पहचाना के ये सब दुखी है, ये रजो और तमोगुण में है और लोभी और आलसी है। रजोगुण में लोभी होता है, तमोगुण में आलसी होता है। तो ये हैं रजो और तमोगुण में, इनका कोई और इलाज नहीं, कृष्ण कृपा करो इनके ऊपर और ये भागवत धर्म को समझ लें। तो प्रभुपाद जी भगवान कहते वो मेरी पूजा नहीं करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी तत्काल फल चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी पहले जो पाश्चात्य देश के लोगों को भारत के विषय में गलत भावना है उसको पहले दर्शा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भारत में लोग बहुत से भगवानों की पूजा करते हैं, और ये सत्य है कि नहीं, लोग कहते ऐसे ही है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सत्य नहीं है, ये गलत धारणा है, भगवान एक है। और कहते हैं सब देवता भगवान है। तमाल कृष्ण महाराज प्रचार करते हुए गोस्वामी फिजी में जब गए तो फोटो लगाए सब देवताओं के, बोला भगवान कौन है, देख गुजराती माता जी कहती है बधानु भगवान मानो छू, मतलब ये सारे भगवान है उसमें ऐसे है। और फिर महाराज ब्रह्म संहिता से हर देवता का नाम लेकर उसका श्लोक लेकर उनको समझाने लगे कि ये देवता नहीं है, देखो ये गोविंद की पूजा कर रहा है, ये देवता नहीं है, देखो ये गोविंद की पूजा कर रहा है। वो उनका बहुत प्रसिद्ध आज से 30-35 साल पहले प्रसिद्ध एक वीडियो था महाराज का फिजी वालों को प्रचार करते हुए। तो गलत धारणा लोगों की है कि बहुत बहु भगवानवादी है हम, बहु भगवानवादी नहीं है हम, भगवान एक है, देवता अनेक हैं, अनेक देवता भगवान नहीं है, उसके अंश हैं। और देवता प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के अधिकृत है जीव, तत्व जीव है, देवता का तत्व जीव है। तो ये प्रभुपाद जी पहली बात गलत धारणा जो है दुनिया में उसको ठीक समझा कर फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक है, देवताओं को उन्होंने संसार के संचालन के कार्य, वैसे देवता हैं सब भक्त वैष्णव, परंतु उसको शासन करने की इच्छा है तो भगवान उनको ये कार्य देते हैं, लेकिन है वैष्णव सब। इसलिए सावधानी ये करनी चाहिए कि देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, ये भी सावधानी करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं वो भगवान के समान नहीं है, तो भगवान कौन है, तब भगवान तीन नाम लेते हैं, कौन से लेते हैं जरा पढ़ो, तीन नाम लेते हैं जो सामान्य संसार में प्रचलित हैं, नारायण विष्णु कृष्ण, तीन नाम लेते हैं प्रायः लोग कहते हैं नारायण विष्णु ये प्रसिद्ध नाम है, और कृष्ण, तीन नाम ले रहे हैं ना। और फिर क्या कह रहे हैं, जो इनको देव इन तीन नाम लेके इनको जो देवताओं के समान समझता है वो कौन है, पाषंडी है, वो पाखंडी है, वो नास्तिक है। बड़े से बड़ा देवता शंकर हो या ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मा जी से शंकर बड़ा है, परंतु है ब्रह्मा जी से उत्पन्न, शंकर की उत्पत्ति कहां से होती है, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से। इसका अर्थ नहीं है कि ब्रह्मा जी बड़ा है और शंकर छोटा है, नहीं है, फिर भी शंकर बड़ा। जैसे ब्रह्मा जी की नासिका से वारादेव प्रकट होते हैं, तो वारादेव छोटे हुए कि बड़े हुए, वारादेव बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं, ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं उनकी, तो प्रकट खंभे से हो गए नरसिंह देव, तो फिर भी भगवान है, तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो यहां शंकर जी जो है वो जीव तत्व नहीं है, बाकी सब देवता जीव तत्व है ब्रह्मा तक, ब्रह्मा पर्यंत सारे देवता जीव तत्व है, परंतु शंकर जीव तत्व नहीं है और विष्णु तब विष्णु भी पूर्ण नहीं है, विष्णु का विकृत रूप है, प्रकृति को प्रकृति का स्वामी है, दुर्गा का स्वामी है, भाव है शंकर का नाम, भवानी का स्वामी है जो संसार का संचालन चलाती है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत का एक श्लोक उदाहरण दे रहे कि शंकर और ब्रह्मा भी भगवान की उपासना करते हैं। शिवा व्रंची नुतन, शंकर जी किसकी उपासना करते हैं कोई पूछे तो क्या कहोगे? उनका उनका आराध्य देव है संकृष्ण, भागवत में संकृष्ण की उपासना करते हैं। वैसे राम कृष्ण सबकी उपासना अपनी जगह पे करते हैं, चेतना महाप्रभु ने तो शंकर के भगवान शंकर के 8 श्लोक लिखे हैं, आपने कभी देखे हैं पढ़े हैं? चेतना महाप्रभु अपनी यात्रा में जितने शंकर जी के प्रमाणिक शिव लिंग थे सब में गए, काशी विश्वनाथ से होते हुए वो मल्लिकार्जुन से होते हुए सब जगह जो रास्ते में आए वहाँ गए और वहाँ 8 श्लोक पढ़ते थे, वो चेतना महाप्रभु के मुख से भगवान शंकर की महिमा गाई हुई है। और 2009 के बैक टू गॉडहेड में वो है, 2009 का जो भगवत दर्शन है उसमें ये आया है, क्योंकि हमारे भारत में शंकर जी के उपासक भी बहुत ज़्यादा हैं और शंकर जी परम वैष्णव है, अगर उनसे कोई भांग और गांजा नहीं मांगेगा तो भगवान श्री कृष्ण दे देंगे, वो दया करते हैं असल में। और बहुत से महात्मा हम जानते हैं जो शंकर के उपासक थे, उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति में आए, तुलसी के सामने ब्रज में भजन कर रहे, हाँ सच है ये, तो वो दया करते हैं। इसलिए ये 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कहे हैं बहुत अच्छे हैं, गोविंद नाम गानन ऐसे उसमें ये भी शब्द लिखे हैं कि भगवान के नाम गाते हैं, या भी ये भी आप एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो, क्योंकि प्रचारक हो ना तो आना चाहिए, एक ये आना चाहिए शंकर जी के लिए और एक ब्रह्म संहिता का श्लोक आना चाहिए यथा दधि खीर विकारम वाला, क्योंकि प्रचार करने के लिए ये 2 श्लोक आएंगे तो आपको लोग समझेंगे कि आप शंकर जी के तत्व को जानते हैं, और चेतना महाप्रभु के मुख से कहे हुए श्लोकों का कहेंगे तो अच्छा लगेगा। गौरी नयन उत्सव आया, जो गौरी के नैनू के उत्सव है तो शंकर जी की महिमा भी गा रहे हैं अपनी जगह पे। तो प्रभुपाद ने लिखा है वो भगवान की उपासना करते हैं, तो हमको ये श्लोक 11:5:33 का प्रभुपाद ने दिया, और हम आगे जाते हैं। अब प्रभुपाद ने लिखा है लोग तो मानव को भगवान करके पूजते हैं इस संसार में, क्या लिखा है बड़ा आश्चर्य, क्या लिखा है आश्चर्य, क्या लिखा है? दो शब्द है अंग्रेजी में, एक एंथ्रोमॉर्फिज्म और ज़ूमॉर्फिज्म, मानव को भगवान और क्या लिखा है, फिर कैसे लोग क्या लिखा है, फिर आश्चर्य है, आश्चर्य राशन क्यूरियासिटी लिखा है अंग्रेजी में, क्या है लिखा है, आश्चर्य लिखा होगा, आश्चर्य तो ये है फिर भी कि बहुत से बड़े बड़े मानव के नेता उनकी मूर्ख लोग पूजा करते हैं कि ये भगवान है, ऐसे लिखा है ना, मानव को भगवान के रूप में, और दूसरा क्या लिखा है जू मार्फिज्म के लिए, क्या लिखा है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, 2 शब्द है एंथ्रोमार्फिज्म का मतलब आप मानव को अवतार भगवान मान के पूजा करते हैं, और जू मार्फिज्म प्रभुपाद ने और शब्द लिखा है, वो आगे है। ये केवल ये 3 लाइन है, इसमें 2 शब्द है तो एक पढ़ा है, दूसरे को कहीं से ढूंढो। अवतार कितने आपको मिले हैं अभी तक, नहीं वो अवतार नहीं, ऐसे मानव अवतार जिसको मूर्ख पूजते हैं, कई जगहों पे तो अभी नेताओं का भी फिल्म के अभिनेता को भगवान करके कई मूर्तियां स्थापित किए। सबसे ज्यादा अधिक से अधिक मूर्खता भगवान की तरफ पूजे जाने वाला ऐसा कौन है जिसकी मूर्ख पूजा कर रहे हैं इस वक्त भारत में? हाँ, किसका? सचिन तेंदुलकर बैट हाथ में लिया हुआ है, गदा की जगह पे लड्डू की जगह पे बाल नहीं भाई, ये ऐसे बहुत मूर्ख हो सकते हैं। लेकिन अब मैं जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर क्या है? हाँ जी, किसका? अमिताभ बच्चन का मंदिर बना दिया। अच्छा है, ये एक एक नहीं, ये तो एक जगह है, सब जगह गधे की तरह लोग पूजा कर रहे हैं भगवान समझ के किसी को। अता पता नहीं, अता पता नहीं, कोई भक्ति की लता नहीं। स्वामी नारायण भगवान नहीं है, वो एक वैष्णव भक्त है। उसके तिलक देखो वैष्णव है, विष्णु स्वामी के हैं, थोड़े से साइड में चले गए हैं। असल में विष्णु स्वामी है वो, विष्णु स्वामी संप्रदाय के वैष्णव हैं। वैष्णव जन तो तिनको जानिए जो पीड़ पराई जाने रे, उनकी जो जो उनकी वो वैष्णव है, लेकिन थोड़े से दो उसमें दो सेक्ट हो गए, तीन चार हो गए हैं। तो एक जो है वो अपने गुरु को ही पूज रहे हैं भगवान की जगह पे। प्राय ऐसे बहुत से भगवान के नाम में पूजे, हमको तो कभी मिलते हैं लोग, उसके चेहरे कहते हैं ये हमारा भगवान है। हम कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं ये आपको भगवान मानते? बोला इनका दिल कैसे दुखा है, कह रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। अरे तुम हो के नहीं हो? बोला हो न, इसको छोड़ो, लेकिन इनका दिल नहीं दुखाना। तो मैंने बोला गुरु तुम हो या ये हो? तो चेले के दिल नहीं दुखाना है। अरे चेले का दिल नहीं दुखाना है, उसको तो थप्पड़ मार के सीधा करना है, जैसे मटके को मार मार के ठंडे पानी का बनाया जाता है कि बिना मारे के बनता है, उसको हाथ नहीं लगाना है। बहुत मूर्ख है ऐसे। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, परंतु नारायण वो जो परम पुरुष भगवान है, शंकराचार्य ने भी उसको नारायण माना है, जो निराकारवादी है उसने भी नारायण माना है कि वो प्रकृति से परे है। परंतु फिर भी कौन देवताओं की पूजा करेंगे? प्रभुपाद ने सातवें अध्याय का एक श्लोक दिया है, हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरण लिया गया है, अल्प मेधसा, जिनकी बुद्धि बहुत अल्प है। और फिर प्रभुपाद जी ये देवता वाली बात पे आते हैं, जो बुद्धिमान है वो तो भगवान के भक्त बनते हैं। फिर प्रभुपाद जी असल में सावधान कर रहे हैं मूर्खों को, क्या कह रहे हैं? ये भौतिक जगत भी अस्थाई है, सदा रहने वाला तो है नहीं, नाश हो जाएगा, इसके देवता भी नाश हो जाएंगे, तो उनका फल भी नाश हो जाएगा, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो? भगवान जो नित्य रहने वाला है, उसकी भक्ति करके नित्य धाम को और नित्य सुख को क्यों नहीं प्राप्त करते हो? तुच्छ सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? देवता ही नहीं रहेगा जब भौतिक जगत ही नहीं रहेगा, भौतिक जगत के देवता ही नहीं रहेंगे, तो उनका दिया हुआ फल कहाँ रहेगा? तो ये प्रभुपाद जी कर रहे हैं उनको सावधान। और उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी? एक उदाहरण दे रहे हैं इन देवताओं को, उनके लोक को और उन फल को, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। कौन से सागर में ये बुदबुदे हैं? कौन से? विराट सागर में। तो विराट सागर कौन सा है? कॉस्मोस लिखा है ये जैसे विराट सागर में ये बुदबुदे के समान है, भव सागर में, इसे दुनिया भव सागर है, इसमें थोड़े थोड़े बुदबुदे ही समाप्त हो जाएंगे, इनका ज्यादा रहने वाले नहीं। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं देवता को पूछते, फिर भी कुछ बुद्धि वाले तो थे ना, अल्प बुद्धि वाले थे ना, ये तो मानव को पूछते हैं, ये तो बिल्कुल गधे। हाँ, किसी नेता के पीछे लगे होते हैं, उसी के चेले, उसी के चमचे, और उसी से थोड़ा सा लाभ लेना है, कोई लेसन लेना है, वो भी दारू के दुकान का लेना है, और उसी में खुश होते हैं कि हमारे को बड़ा भला बड़ा लाभ मिल गया इससे। काम क्या किया, दारू का लेसन लिया, किससे लिया, मंत्री से लिया, वो मंत्री उसके लिए पूजने हो गया। अब मंत्री तो जाएगा नरक में, लेसन दिया, ये लाखों को और को ले जाएगा साथ जिनको पिला रहा है, और ये कहता है बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। लोग कितने मूर्ख हैं। तो ये प्रभुपाद जी उन मूर्खता को थोड़े से सभ्य शब्दों में बता रहे हैं। एक शब्द लिखा है उनके पूछ बन जाते हैं, देखो पूछ लिखा है, उनके पूछ बन जाते हैं। बड़े बड़े उनके पीछे उनके पूछ बनकर, उनके पूछड़ी बनके उनके पीछे घूमते घूमते बड़े बन जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं। अब अंतिम लाइन को देखिए, इस ये श्लोक कहता है कि कृष्ण भावना में बहुत कम लोग रुचि लेते हैं, और जब ये कहो आप प्रचार करते हुए तब कहना कृष्ण को चिंता नहीं है कि आप आओगे कि नहीं आओगे। पांच पांडवों से कृष्ण प्रसन्न था, करोड़ कौरवों का तो सत्यानाश कर दिया, आप जाओ कौरवों के पक्ष में, हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई कम कम कृष्ण की भक्ति में आते हैं, तो इससे कोई कृष्ण को कोई घाटा हानि नहीं पड़ने वाली। कृष्ण केवल पांच पांडवों के पक्ष में था, कौरवों के करोड़ कौरवों के पक्ष में नहीं था। तो अगर थोड़े भी भक्त बनेंगे तो कृष्ण उन्हीं के तरफ रहेंगे, वो वोट से कृष्ण को नहीं आप जीत सकते कि हमारे को कृष्ण मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ सावधान क्या कर रहे हैं कि आप प्रचार करने जाओगे सब भक्त नहीं बनेंगे, इसलिए निराश मत होना, अपने काम में लगे रहना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला श्लोक। तो ऐसे क्यों करते हैं ये, फिर चक्कर में क्यों पड़ते हैं? बोला मैंने, भगवान कहते मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने एक वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई है और वो गुण और कर्म के आधार पे बनाई है, मैंने बनाई है, परंतु मैं उससे परे हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता अहम् अपि तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। पहली लाइन में चार वर्ण की सृष्टि मैंने की, किसके आधार के ऊपर की? भगवान बोला गुण और कर्म के विभाग से की। कौन से प्रकृति के गुण के प्रभाव में है और कौन सा कर्म कर रहा है, उससे चार वर्णों की सृष्टि मैंने की। तस्य कर्तारम पीमा, उसका मैं करता हूं, उसकी सृष्टि करता मैं हूं। विद्य जानू, अकर्तारम मैं फिर भी अकर्ता हूं और मैं अविनाशी हूं। ये गुणों के प्रभाव वाले तो नाश हो जाएंगे, मैं अविनाशी हूं। तो भगवान सृष्टि करते हैं, परंतु किसी भगवान किसी वर्ण के नहीं, वो तो वर्णों से परे हैं। इसी श्लोक के भाव को चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि भगवान आप पक्षपात करते। बोलो नहीं, मैंने तो चार वर्ण बनाए हैं। बोला क्यों बना, ये वर्ण है बनाए क्यों है? कोई कहे कि आखिर वर्णों का काम क्या है? पर एक कर्म का सिद्धांत है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण विश्व व्यवस्था विशेष रूप से कर्म के सिद्धांत की है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं वर्णों के लिए, अपने अपने वर्ण के कर्म से मेरी पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये कर्म सिद्धांत में वर्ण की आवश्यकता है। परंतु दोबारा फिर एक बार याद करो कि वर्ण कौन से आधार पे है, गुण के, और गुण किस गुण किसके हैं, प्रकृति के। इसलिए वर्ण आश्रम प्राकृत है, अप्राकृत नहीं है, गुणों के अंतर्गत आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहो कि वर्ण आश्रम से ऊपर, इससे ये बाह्य है, ये बाहर का है। बाहर का क्यों है? बोला वर्ण आश्रम के अंतर्गत है, ये गुणों के अंतर्गत है, ये प्राकृत है, इससे आगे। और तब तब क्या कहा रामानंद ने, उसको स्वीकार किया, सताम प्रसंगाम मम वीर्य कोविदो, ये जब कहा कि भक्तों के संग में मेरी शक्तिशाली कथा का श्रवण, बोला यहां से शुरू करो, यहां से कथा आगे बढ़ाओ। तो वर्ण आश्रम है काय के लिए? वर्ण आश्रम है सब कर्म भगवान को अर्पण करने के लिए, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो भी हमारे अंदर योग्यता है उसको भगवान की सेवा में लगाए, वर्ण आश्रम का उद्देश्य है। लेकिन भगवान वर्ण आश्रम से परे है और भगवान के भक्त भी वर्ण आश्रम से परे है, क्योंकि तीनों गुण से परे हैं। तो अब इसमें एक शब्द है, लोगों के कर्म के भोग के लिए मैंने बनाए हैं, इसमें एक शब्द यह है, यह शब्द कहाँ है? चतुर्वर्णीय, वर्णीय है ना, क्या है देखो, हाँ यह शब्द है ना, वर्ण के सब पीछे यह लगा है ना, चतुर्वर्णीय, चतुर्वर्णीय, चतुर्वर्णीय में जो यह शब्द है उसका अर्थ है हरेक अपनी इच्छा से उसको स्वीकार करता है, मैं उसको उधर जबरदस्ती नहीं डालता हूं। यह शब्द उसके व्यक्तिगत इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, और व्यक्तिगत रुचि को सूचित करता है। वर्णियम में यह शब्द उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि को सूचित करता है। अब ब्राह्मण का कार्य क्या है? सम दम आदि। क्षत्रिय का क्या है? रक्षा। कौन से वर्ण है ये हम जानते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी सिद्धांत पहले दे रहे हैं, भगवान सबकी सृष्टि करते हैं, सबका पालन करते हैं, सभी उसके ऊपर टिके हैं, सबका संहार करते हैं, तो फिर वर्ण भी तो भगवान ने ही बनाए, ये प्रभुपाद जी सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य सिद्धांत में चल रहा है, और फिर कहते हैं चार वर्ण भगवान कहते हैं मैंने बनाए हैं। पहले को ब्राह्मण कहते हैं, बुद्धिमान ब्राह्मण है वो सतोगुण में होते हैं प्राय। फिर शासक वर्ग है वो क्षत्रिय कहलाते हैं, और वो उनके अंदर थोड़ा सा सतो और अधिक रजोगुण होता है। और उसके उपरांत तीसरे वैश्य हैं, उनके अंदर प्रायः रजोगुण होता है और थोड़ा सा तमोगुण का लेस होता है। और अंतिम चतुर्वर्ण जो है सेवक वर्ण है, उसको शूद्र कहते हैं और प्रायः तमोगुण में है। अब ये भगवान ने कहा चार वर्ण, और भारत के अंदर इस वक्त इसके ऊपर बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद है, भाई ऊंच जाति नीच जाति, और भगवान कहते हैं मैंने बनाई है, तो अब प्रचार करके जाएंगे तो लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे कि ये भगवान ने बनाया। अब में से कोई आके यार दो मिनट का प्रवचन दे, पब्लिक बैठी है कि ये चार वर्ण भगवान ने बनाए हैं, आप उनको कैसे समझाओगे कि ये कोई जाति पाति नहीं है। जाति होती है पशु जाति, मानव जाति, देव जाति, ये जाति पाति नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा ब्रिटिश काल में इसको एक्सप्लाइट किया गया, इसको बदनाम किया गया है ज्यादा, लेकिन बहुत बड़ा हानि हुई है। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है इन वर्णों के जातिवाद में परिवर्तन करने से वैदिक सनातन धर्म के हास हुआ, जैन अलग हुए, बौद्ध अलग हुए, और आगे अलग होते हुए विभाजन होते जा रहे हैं। तो आप में से कोई प्रवचन दो मिनट का करो। भाई पब्लिक भाई पब्लिक में आप वो कहते भगवान कृष्ण ने ऐसे क्यों जाति पाति बनाई है, आपको कैसे समझाएंगे? एक ये एक इस प्रकार से लोगों को समझा सकते हैं कि भाई जज का बेटे को जज तो नहीं कहते हैं, जज का बेटा कहते हैं, अगर पढ़ेगा जज बनेगा तो जज, तो इसका मतलब अपने कर्म से उनका वर्ण होता है। एक ये बात उदाहरण अच्छा है, और कोई सटीक उदाहरण? और फिर भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि करिए कहाँ से किए कैसे किए, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ के आए। भगवान को विराट रूप के मस्तक से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और जांघों से पूरे जांग पूरा शरीर का आधा, सबसे ज्यादा पूरा आधा भाग शरीर का शरीर ये शूद्र है जो ऊपर वाले तीनों को उठा के चल रहा है। आपको प्रभुपाद जी ने प्रोफेसर कोटावस्की को रशिया में इसी वर्ण आश्रम को समझाया था, और वो है हमारे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्म साक्षात्कार विज्ञान में। मैंने उसको जब पहली बार पढ़ा था आज से 80 में, तब मैं प्रभुपाद जी के उस सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि ये बहुत प्रैक्टिकल सिद्धांत है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ रहा था मैं उस वक्त, तो हम प्रचार में ऐसे कहेंगे कि भाई प्रभुपाद ने एक कहा, क्या कहा अमेरिका में कि एक बहुत अच्छा लड़का हो, खाता भी ठीक हो, भागता भी हो, पागल हो तो किसी काम का है, दिमाग ठीक नहीं है तो किसी काम का है, और दोनों हाथों से लूला है तो, पागल भी और लूला है तो किसी काम का है, केवल खाता है और भागता है किसी काम का है? बोला समाज ऐसा लूला लंगड़ा है, ब्राह्मण है नहीं, मस्तक है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, रक्षक है नहीं, और केवल वैश्य है, पेट भर रहा है। दो ही दुनिया में प्रभुपाद का वर्ण है, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। जो पूंजीवादी है वो पेट है और साम्यवादी है वो पांव है, अब न हाथ है और न सर है, तो ऐसा समाज कैसे सुखी होगा? अब इसको जातिवाद कैसे कहोगे जब आपका अपना पांव है कि आप घर में छोड़ के आते हैं, उससे आप कोई नफरत करते हैं, अपने पांव से आप द्वेष करते हैं, हाँ द्वेष करते हैं, बुरा कहते हैं अपने पांव को, नहीं ना? अपने पेट का सबसे ज्यादा ध्यान, तीन टाइम माल भरते हो कि नहीं भरते हो? अब तो कब कोई प्रचार में कहते, देखो सर के ऊपर टोपी हो ना हो, पगड़ी हो ना हो, पाँव में जूता पहले चाहिए, तो इसका मतलब शूद्र का सब सुरक्षा करते हैं। ब्राह्मण तो तपस्या सह लेता है, सर के ऊपर तो गर्मी आए कोई बात नहीं, लेकिन वो बेचारा पाँव जो है शूद्र थोड़ी तकलीफ भी नहीं सह जाएगा, उसको तो पहले जूता चाहिए। तो ये चार हमारे अंगों के साथ सृष्टि कैसे बनी हुई? पर प्रभुपाद ने वहाँ का बताओ, दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ना हो, अध्यापक नहीं हो? कोई ऐसा देश है दुनिया में? नहीं ना? तो इसका मतलब जिसको आप टीचर कहते हो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं, तो है कि नहीं है? वर्ण सब दुनिया में है कि नहीं है? और फिर प्रभुपाद ने कहा आपके पास सेना है? ना है। और अशासक है? बोला है। बोला इसी को हम क्षत्रिय कहते हैं। अब दुनिया में बुरी में है कि नहीं है बताओ? प्रभुपाद ने कहा यहाँ आपके पास कृषि करने वाले हैं और पशुपालक हैं और वाणिज्य करने वाले, हाँ बोला इसी को वैश्य कहते हैं। बोला वर्किंग क्लास लेबर, बोला है इसको शूद्र कहते हैं। अब बताओ कहाँ नहीं? और समाज के अंदर देखो ये दिमाग बहुत छोटा है लेकिन सारे शरीर को चलाता है। तो समाज अगर 100 का है तो उसमें एक ब्राह्मण ही बहुत है, सबको संभाल लेगा। हाथ दो, सर की भी रक्षा हाथ करेगा, सर अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रिय करेगा। तो उस समाज में 5 क्षत्रिय होंगे तो बहुत है। ये अंग्रेज जब यहाँ शासन करने आए तो कोई 50-60 लोग भी नहीं थे जो शासक थे और पूरे भारत के ऊपर शासन किया, 50 लोग भी नहीं होंगे, 100 लोग भी गिनती के नहीं थे जो थे क्षत्रिय, जिन्होंने पूरे देश के ऊपर राज कर लिया। तो क्षत्रिय 5 भी होते हैं। और फिर ये पेट बताओ, सर के ऊपर गुलाब जामुन रखने से चिपचिप असर होगा, कुछ नहीं होगा। हाथ के ऊपर रस मलाई रख दो, घंटा भर हाथ थक जाएगा, पेट में डालेंगे तो सर को भी शक्ति मिलेगी और हाथ को भी मिलेगी। तो वैश्य एक ही है जो ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, क्षत्रिय को टैक्स कर देता है और शूद्र को तनख्वाह देता है। तीनों को चला तो वही रहा है, तीनों को चला रहा है कि नहीं। तो ये समाज के अंदर ये व्यवस्था बनी हुई है, इसका विकृत रूप हो गया है। अब इसका रूप हो गया है विकृत। प्रभुपाद जी कहते हैं विकृत रूप में क्या है कि ब्राह्मण के दो काम मुख्य हैं, दो मुख्य समझ लो, एक भगवान की कथा कीर्तन प्रचार करना और भगवान के नाम पे प्रसाद खाना। अब प्रसाद तो सब खाते हैं और प्रचार कोई नहीं करता है, तो बोला ये ठीक नहीं है, दोनों काम करना चाहिए। भगवान ब्राह्मण के मुख से खाता है और ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा होती है, तो दोनों दो काम ब्राह्मण को दोनों करने चाहिए। एक करेगा एक नहीं करेगा तो ब्राह्मण नहीं। और जहाँ सब खाने वाले हैं और कथा करने और प्रवचन करने वाला कोई नहीं है, ये समस्या है ना। और क्षत्रिय का काम है केवल रक्षा करना और कर लेना, व्यापार करना क्षत्रिय का काम नहीं है। अब जितने आपके नेता हैं सबका कारखाना चल रहा है, सबकी भागीदारी चल रही है लोगों के बिजनेस में, इसलिए उनको पक्षपात करना पड़ेगा ना, वो न्याय नहीं कर सकते। तो इसलिए क्षत्रिय वर्ण भी बहुत भ्रष्ट है। तो ये दो वर्णों की बहुत बड़ी कमी है। प्रभुपाद ने कहा इस कान में मैं तो ब्राह्मण पैदा ब्राह्मण में ट्रेन करने जा रहा हूं, लेकिन ब्राह्मणों का काम है क्षत्रियों को ट्रेन करना। हम आप वैसे इतने सारे हमारे पास भक्त आते हैं, सबको ब्राह्मण दीक्षा सब ठीक है, लेकिन हम अपने मंदिर की रक्षा के लिए क्षत्रिय अपने क्यों नहीं पैदा कर सकते? जिनको हमने अपनी रक्षा के लिए रखा है, जिसको अंग्रेजी में कुछ भी कहो, सिक्योरिटी कहो क्या कहो, वो तो बेचारे नौकरी के लिए आए, वो थोड़ी आपके लिए लाठी उठाएंगे या बंदूक उठा के आपके मंदिर की रक्षा करेंगे क्या? तो अपने क्षत्रिय क्यों नहीं पैदा करते? और ये और ब्राह्मण से क्षत्रिय को ज्यादा सम्मान आदर, बड़ा घर रहने का, बड़ी गाड़ी चाहिए। ब्राह्मण तो पेड़ के नीचे बैठा रहेगा, लेकिन क्षत्रिय के लिए ये सब चीजें चाहिए तब वो काम करेगा। तो इसका मतलब अगर जिसको आपको ट्रेन करना है मंदिर में क्षत्रिय, उसको मान सम्मान दो सब ऐसा ताकि वो काम करे। इसकी आवश्यकता है। कितना हम खर्चा कर रहे हैं आप बताइए, कितना खर्चा हमारा होगा सिक्योरिटी के ऊपर? हमारे इस मंदिर का तो मैं नहीं कह सकता, बॉम्बे दिल्ली का नहीं तो भी कितना, 5-10 लाख से ऊपर खर्चा है। हम क्यों नहीं अपने बना सकते बताइए ना। ट्रेनिंग हम ब्राह्मण, ये तो आपको ब्राह्मण बनाया है तो तैयार करो ना क्षत्रिय अपने। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे थे हमारे को वर्ण आश्रम व्यवस्था बनानी पड़ेगी अपनी, बहुत आवश्यक है इसकी। ऐसे 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 प्रभुपाद जी के शिष्यों में क्षत्रिय भाव के थे, उनको प्रभुपाद ने जिन्होंने मायापुर के अंबर जब लोग आए तो गोलियां चलाई थी, ऐसा नहीं हट गए थे पीछे। एक श्रीधर महाराज अब तो नहीं रहे, श्रीधर स्वामी, वो पुस्तक बेच रहा था, भक्त उसका पुस्तक उठाया, बोला मैं उठाऊंगा क्या करेगा? बोला उठाएगा तो क्या करेगा? मुक्का मारूंगा, बोला मैं तुम्हारा संस्था ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा ही मूड है कि अन्याय करने वाले के ऊपर मुक्का उठाएगा। और ऐसे वो ज्वाइन किया इसका। एक और महाराज प्रचार करने के लिए चला गया, और प्रचार करते करते उसने कहा हमारा शंकर जी भगवान है। बोला नहीं, तुम्हारा शंकर भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान। ऐसे कर जोर से मारा, टेबल का शीशा टूट गया। सेठ ने कहा महाराज स्वामी बने हो, इतना गुस्सा करते हो। बोला ये प्रभुपाद की कृपा है कि मैं स्वामी बना हूं, शीशा टूटा है, असली में होता तेरा सर फूटता, इतना सुधर गया हूं। सर को छोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। तो ये ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं कि नहीं, हमारे पास ऐसे भक्त हैं, उनका ये उपयोग क्यों नहीं करते हम? अपनी समाज बनाना पड़ेगा। आइए इसको पढ़ते हैं, ये वर्ण आश्रम को आगे, और ये वर्णों के और कर्म, और इस कर्म के लिए प्रभुपाद ने लिख दिया है कि आगे 18वें अध्याय में कर्म का वर्णन आएगा। और फिर ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव है, इस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्राह्मण से ऊपर भी वैष्णव है, क्योंकि वो भगवान के सारे ही तत्वों को जानता है। वैसे ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म जानाती थी, ब्रह्म ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, ब्रह्म का अर्थ है या वेद, जो वेद को जाने वो ब्राह्मण। परंतु वैष्णव उससे ऊपर है, क्योंकि वो भगवान को भी जानता है। जैसे भगवान चारों वर्णों से परे हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी चारों वर्णों से परे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब हम 14वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्राह इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। नमाम कर्मणि लिम्पन्ते, मुझे कर्म नहीं बांधते, मैं कर्मों से लेपायमान नहीं होता। इसका मतलब मुझे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। पहली बार नमे कर्म फले स्प्रहा, और न ही कुछ कर्म के फल की मुझे इच्छा है। तो इनसे दो शब्द निकलते हैं, पहले उन दो शब्दों को समझो तो आपको कथा आगे समझ में आएगी। दो शब्द क्या बनते हैं इससे? एक दो शब्द केवल दो ही बोलने हैं, कर्ता और भोक्ता। भगवान ने अपने आप को कर्ता मानते हैं, कर्माणि लिम्पन्ते, मैं अकर्ता हूं। कर्ता और भोक्ता जो मानेगा वो फंसेगा। कर्ता और भोक्तापन, कर्तापन अहंकार है, मैं करता हूं, और भोक्ता का मतलब फल चाहिए। कर्ता और भोक्ता ये भगवान में नहीं है। जो इस बात को जानेगा वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कैसे? इस बात को जानने से कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हो जाएगा? इसको जानने के लिए भगवान ने कहा मैं तीनों गुणों से परे हूं, है ना? भगवान तीनों गुणों से परे है ना? जो भक्त तीनों गुणों से परे हो जा वो ये समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ब्राह्मण नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो अभी सतोगुण में है, वो नहीं समझ पाएगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसको जो समझेगा वो कर्म के बंधन से बच जाएगा, कर्ता और भोक्ता। अब इसके तात्पर्य में ये चतुर्वर्णों को विस्तार कर रहा है, इसको चतुर्वर्ण का ही विस्तार है ये। कि जीवों को ये संसार बांधता है, मेरे को नहीं बांधता है। क्यों नहीं बांधता है? क्योंकि न मेरा कर्तापन है, मैं न मुझ में भोक्तापन है। जीव कर्ता और भोक्ता मानता है, इसलिए फंस जाता है। मैं अपने आप में आनंदमय हूँ, मैं क्या संसार से सुख लूंगा जो मैं बनूं। भगवान अपने आप आनंदमय है ना, तो क्यों भोक्ता क्यों बनेंगे? भोक्ता वो बनेगा जिनके पास कुछ नहीं हो, अभाव हो तब ना। निमित्त मात्रम एवास, विष्णु पुराण का एक श्लोक है, भगवान क्या है, निमित्त मात्रम एवासौ सृज्यामं सर्ग कर्माणि प्रधान कर्म भूताय यतो वही सृज शक्ति। आपने आया ना अपने पास प्रभुपाद जी का, मैं तो अभी बलदेव विद्याभूषण का पढ़ रहा हूँ, उन्होंने ये श्लोक दिया है। विष्णु पुराण, भगवान क्या करते हैं, जीवों की सृष्टि करते हैं, उनके का कारण है, कौन से कारण है, निमित्त कारण है। हाँ ठीक है, फिर निमित्त शब्द भी निमित्त लिखे, निमित्त मात्र, परंतु ठीक है। अब उदाहरण दिया है चक्रवर्ती पाद ने, वही उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं। इस श्लोक का उदाहरण क्या दिया है, बरसात से सारी वनस्पति उगती है, तो बरसात कारण तो है, परंतु कौन सी कैसे होगी, उसमें बरसात का हाथ तो नहीं है ना, वो पहले जो बीज होगा वही निकलेगा ना। बरसात कारण है वनस्पतियों का, परंतु कौन सी वनस्पति कड़वी होगी मीठी होगी, उसमें बरसात का कुछ लेना देना है क्या, नहीं है ना। हाँ, बरसात का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही भगवान सृष्टि करते हुए भी सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है, कौन क्या करेगा, अपना कर्म खुद करता है। तो ये दो उदाहरण दिए, इसी को श्रील प्रभुपाद ने दिए, वेदांत सूत्र में भी कहा है भगवान निष्पक्ष है, ये श्लोक भी प्रभुपाद ने दिया है, निश वैष्मय नैर्गुण्य न सापेक्षत्वा यथा ही दृश्यति, किसी से अन्याय नहीं करता है भगवान, पक्षपात नहीं करता है जीवों के साथ। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे राजा कानून बनाता है, परंतु राजा कानून से, कानून के दायरे से बाहर होता है। दायरे को क्या बोलते हैं, दायरा उर्दू का शब्द है। हाँ, कानून बनाने वाला राजा कानून की सीमा से बाहर होता है, ऐसे संसार बनाने वाला भगवान संसार के प्रभाव से परे है, ठीक है। ये प्रभुपाद जी का पहला सिद्धांत है, क्योंकि भगवान सृष्टि से अपने आप को परे रखता है, करते हैं लेकिन उसे उसमें कोई आसक्ति नहीं है। ये कौन से भगवान के छह गुणों से मैं कौन सा गुण है, भगवान छह गुण है, सदगुण संपन्न है ना, तो छह गुणों में ये कौन सा गुण है, त्याग। ये सारी संसार बना, हम तो एक छोटा घर बनाते हैं तो भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भगवान दुनिया बना के उसके भाई चलाओ आप लोग चलाओ, दे दे सबको दे दिया, और स्वयं बांसुरी बजा रहा है, गैया चरा रहा है, कोई काम नहीं है। तो ये भगवान के त्याग का गुण दर्शन होता है, ठीक है ना। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बड़े कारखाने का मालिक है, अब उसका नौकर जो चपरासी है वो गलत सही करेगा, उसमें उसको मालिक का क्या जाए, भाई वो जाके कहीं चोरी करेगा उसमें मालिक जिम्मेदार तो नहीं है ना। तो भगवान ने भाई कारखाने वाले कारखाना बनाया, सबको नौकरी दी, अब कोई गलत करेगा सही करेगा उसमें मालिक का क्या मतलब। ऐसे भगवान ने दुनिया बनाई, अगर कोई अभी कोई नीचे गुण में जाएगा तो उसमें भगवान का क्या दोष, वो तो उसी का दोष हुआ ना। तो एक तो कारखाने का उदाहरण दिया है प्रभु, मिला आपको ये उदाहरण, और फिर उदाहरण क्या दे रहे हैं कि अब जो कारखाने का मालिक है उसको वो थोड़ी शौक होगा जो चपरासी को शौक है, वो तो फिल्म देखने का शौक है मानो उसको, तो वो थोड़ी मालिक का शौक ऐसा होता है। तो जैसे भगवान जो गोलोक में बैठे हैं उसको स्वर्ग में जाने का थोड़ी कोई शौक होगा कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं या नरक में जाने का पाप करेगा, तो भगवान उससे परे ही है ना, ये तो जीव करेगा। तो यह प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है एक बड़ी एक बड़े क्या किसके किसके स्वामी कारखाने का लिखा जो भी ऐसे, ये दो उदाहरण है संस्था का, मतलब असल में कारखानेदार होना है ऐसा कोई, और जो स्वामी है किसी का उसका शौक इतना छोटा तो नहीं होगा जितना कर्मचारी का होगा, दोनों में अंतर है ना। प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं और फिर निमित्त मात्र वाला श्लोक लिखा है और इस श्लोक के उपरांत एकदम वर्षा वाला उदाहरण दिया है ना। बिना बरसात के वो नहीं होगी, लेकिन बरसात जमेवार नहीं है कि कड़वा क्यों हुआ और मीठा क्यों हुआ, करेला कड़वा क्यों हुआ और नींबू खट्टा क्यों हुआ, आम मीठा क्यों हुआ, इसमें बरसात के ऊपर दोष नहीं आएगा, ये तो उसका अपना गुण है। ऐसे भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन किसी के वर्ण से लिपायमान नहीं। और फिर प्रभुपाद ने वेदांत सूत्र का वो श्लोक दिया है। अब सीधी बात करते हैं, हर जीव, प्रभुपाद कहते हैं जीव अपने कर्म का स्वयं जिम्मेवार है ना, भगवान केवल उसको सहायता करते हैं, सुविधा देते हैं, किसके द्वारा, बाहिरंग शक्ति के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, अब फिर आप तीसरे अध्याय में पढ़ के आए होंगे, कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, प्रकृति के गुण, प्रकृति क्रियमाण नहीं गुण कर्माणि सर्वस विमूढ़ा कर्ता हम इति मन्यते, ऐसे एक बीच में शब्द रह गया कौन सा, अहंकार विमूढ़ा आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता कौन है, जीव करता है, भगवान करता है या प्रकृति करती है, कौन करता है, तीनों करता है, जीव इच्छा करता है, प्रकृति उपकरण देती है और भगवान अनुमति देते हैं, परमात्मा अनुमति देता है, अनुमंता भरता भोगता, परमात्मा अनुमति देता है, प्रकृति उपकरण देती है, उपकरण का मतलब औजार जिससे काम करें, हाथ दिया पांव दिया आंख दिया, और जीव इच्छा करता है, तीन कर्ता होते हुए भी दायित्व इच्छा करते जीव के ऊपर है, इच्छा करता जीव जमेवार जीव है, अनुमंता देने वाला जमेवार नहीं है, भाई आप चिट्ठी लेके जाओ सरकार को बोलो मेरे को फैक्ट्री लगानी है, सरकार जाओ लगाओ, अनुमति दे दी, आपने कारखाने का सामान खरीदा मशीन खरीद के आए, अब कारखाने में आपका घाटा पड़ गया तो इसमें आपको जिसके अनुमति दी वो जिम्मेवार है क्या, या मशीन जहाँ से खरीदी वो जिम्मेवार है क्या, नहीं, आप जिम्मेवार है, कारखाना आपने लगाया, तो हम इच्छा करता जीव जिम्मेवार है। इसलिए अपने भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये जो इच्छा का दुरुपयोग जो जीव करता है, इच्छा का जो दुरुपयोग करता है यही उसके बंधन का कारण है, इच्छा के दुरुपयोग जीव के बंधन का कारण है। प्रभुपाद कहते हैं जो इन इस सारे सिद्धांत को समझेगा वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कैसे समझेगा, प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा सूक्ष्म लाइन लिखी है, पढ़ो, ये भगवान के विषय में समझेगा कैसे, दूसरे शब्दों में लिखा है, दूसरे शब्दों में क्या लिखा है, कृष्ण भावित अनुभव भक्ति से समझे, किससे समझेगा, ये सिद्धांत समझने के लिए दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य स्वभाव को समझने के लिए भगवान के अनुभवी भक्तों के संघ की जरूरत है। कृष्ण भावना का अनुभवी जो व्यक्त है वो है ना, उसके संघ की जरूरत है। संघ दिख रहा है इसमें, इस लाइन में संघ दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है? अब मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी जो समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पर्सन हु अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड इज एन एक्सपीरियंस मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ओके, एंड दस ही इज नेवर सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ कर्म, ओके। अनुभवी है, अनुभवी की आवश्यकता। अभी संघ नहीं लिखा है, संघ की, परंतु फिर भी आगे आप इस बात को देखना कि यह सब कुछ संभव है संघ से भक्तों के, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये होगा भक्ति से, भक्ति केवल संघ से आती। यहां है अनुभवी हो जाए कृष्ण भावना में, संघ के बगैर नहीं होगा। अब ये 15 श्लोक पढ़ के आज पूर्णाहुति करते हैं। ये हो गया, ये विभाग पूरा हो जाएगा। कल हम इसके बाद वाला विभाग जो है ज्ञान के स्तर पे कर्म, उसको पूरा करेंगे, और कृष्ण की कृपा होगी तो इस सप्ताह में ये पूरा करने का, ये अध्याय पूरा होना चाहिए। तो अब एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि विमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वत्रम् कृतम्। एवं ज्ञात्वा, ऐसे जानते हुए, कृतम कर्म, काम किया पूर्व ही आपसे पहले भी बहुत से महाजनों ने, कौन से, मुमुक्षु भी, मुक्ति के इच्छकों ने, मुमुक्षु का मतलब मुक्ति के इच्छकों ने, उस प्रकार तुम भी कर्म करो जैसे पूर्वजनों किया ऐसे करो। इसका मतलब महाजन गता ये न सपंथ, इसका एक शब्द में कहो तो इसका अर्थ है महाजनों के मार्ग में चलो। इसलिए इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने 12 महाजनों के नाम लिखे हों, कि श्लोक देख के आपको ऐसे पता लगना चाहिए कि इसके तात्पर्य में क्या होना चाहिए। एक एक लाइन में श्लोक का अर्थ है महाजन ये न गता सपंथ, जो भगवान को जानते हैं उनके पीछे चलो। कौन सा, जैसे विवस्वान, भगवान के जैसे पहले विवस्वान ने जाना, जैसे अर्जुन ने जाना, ऐसे आप भी जानो। अर्जुन को कहते जैसे विवस्वान ने जाना, हमारे लिए जैसे अर्जुन ने जाना, अर्जुन के लिए जैसे विवस्वान ने जाना ऐसे तुम भी करो, और हमारे लिए जैसे अर्जुन ने जाना ऐसे हमको करना चाहिए। प्रभु उदाहरण दिया है विवस्वान का बलदेव विद्याभूषण ने। श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, दो प्रकार के दो श्रेणियां हैं मानव की। कौन सी दो श्रेणियां हैं मानव की? एक भौतिक कलमश से फंसे हुए और कलमन से मुक्त। कृष्ण भावना दोनों के लिए लाभदायी है, दोनों के लिए लाभदायी है, प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है ना। और पहले वाले को कृष्ण भावना शुद्ध करेगी भौतिक कलमश से, और जो शुद्ध है वो कृष्ण भावना का अनुशीलन करेगा उदाहरण बन के दूसरों को सिखाने के लिए। तब ये तीसरे अध्याय में आपको याद आएगा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ एवं त्रोजनासन, तो उस वक्त उदाहरण बनेगा। एक दो शब्द कहे हैं, तीन शब्द हैं, आपको बताए थे मैंने कभी नहीं, बलदेव विद्याभूषण ने कहे साधकों के, परिनिष्ठ सनिष्ठ परिनिष्ठ निरपेक्ष। पढ़े कभी बलदेव विद्याभूषण के इंट्रोडक्शन में तीन शब्द हैं, सापेक्ष निरपेक्ष और तीसरा कौन सा बोला ना, सनिष्ठ परिनिष्ठ और निरपेक्ष। सनिष्ठ परिनिष्ठ और निरपेक्ष, सनिष्ठ का मतलब वर्ण आश्रम के अंतर्गत कर्म करते करते आगे बढ़े और भगवान की भक्ति में बढ़े, ऐसा ये होगा सनिष्ठ। परिनिष्ठ का मतलब पहले से ही शुद्ध है परंतु दूसरे के लिए उदाहरण बन रहा है, ये परिनिष्ठ। और जो निरपेक्ष है उसको कोई उदाहरण बनने की जरूरत नहीं, हो तो मस्त भगवान के भजन में है, वो शुद्ध भक्त है, बहुत ऊपर का स्तर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं असल में बलदेव विद्याभूषण का भाव जो है सनिष्ठ और परिनिष्ठ, जो अभी बेचारे भौतिक कल्प वर्णों के अंदर गुणों में हैं, वो आस्ते आस्ते भगवान के इस देवीय ज्ञान को समझेंगे तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। और जो पवित्र हो, अर्जुन अगर आप पवित्र हो चुके हो तो भी काम करो, क्योंकि उदाहरण बनो, जैसे जनक महाराज बना था, जनक आदि जैसे बने थे, जैसे उदाहरण बन जाओ। तो यहाँ प्रभुपाद ने उदाहरण वाला दोनों अर्थ लिखे हैं, देखा आपने, पढ़ के आए हैं आप? हाँ भैया, 15 तक पढ़ा गया? नहीं, 15 तक पढ़ाया आपने, तो इसमें ये लिखा हो, देखना कल आप कम से कम 16 से लेकर कितने, मेरे ख्याल 22 25 तक है, कितने सेक्शन कितना बड़ा है देखो, एक मिनट, सेक्शन है 24 तक, हाँ 16 से 24 तक कल देखो, टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो हम तो यहाँ पढ़ाएंगे आपको पूरे का पूरा, लेकिन आप पढ़ के आएंगे तो अच्छा है। तो प्रभुपाद ने दो उदाहरण दिए हैं, जो अभी कलमश में है वो पवित्र हो जाएंगे ये जानकर, और जो जानते हैं वो उदाहरण बने तो दूसरों को परिवर्तन करेंगे। तो ये दो का उदाहरण हो गया। अब प्रभुपाद जी एक मूर्ख नए भक्तों का गलत धारणा की निंदा कर रहे हैं। कौन सी बात की निंदा कर रहे हैं? नए भक्त होते, अरे हमको कुछ काम वाम नहीं करना, हमको नहीं कहना कि भाई ये मंदिर साफ करना है, हमको नहीं कहना प्रसाद बांटना है, हम तो जाते हैं गोवर्धन में बैठ के भजन करेंगे। ये मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ, इसको किताब में बाद में पढ़िए। ऐसे कहेंगे बहुत सारे, हमको भजन करने दो। प्रभुपाद कहते इस भजन से कर्म अच्छा है, और उदाहरण देते अर्जुन तो कह रहा था ना मैं जाके सन्यासी बन जाऊंगा, और कृष्ण ने कहा नहीं मेरे लिए युद्ध करो, तो यहाँ प्रसाद बांटो, यहाँ पुस्तक वितरण करो, ऐसा नहीं ये छोड़ के जप करेंगे तो नहीं, काम करना है, ये मंदिर साफ करना है तो करना है। तो ये प्रभु, ये नए भक्तों की पहचान है जो काम से भक्त कतराते हैं। कर्म से कतराना नहीं है, कर्म में भोक्ता नहीं बनना है और कर्ता नहीं बनना है, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। ये उदाहरण ये पढ़ लिया दो लाइनें, फिर पहले जैसे ने किया है सूर्य ने किया है, सूर्य का उदाहरण है। और यह हमारा ये श्लोक पूरा होता है, आगे वाले श्लोकों में उदाहरण है, 12 महाजन का इसी से आगे आएगा कि इन कर्मों को समझने के लिए इस सिद्धांत ज्ञान के स्तर के ऊपर महाजनों के रास्ते पे चलना पड़ेगा, ये आगे वाले श्लोक में आएगा। हरे कृष्णा, कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, क्या शिव कल्याण है, सदाशिव सदा कल्याण है, आपको थोड़ा कल्याण चाहिए या कम चाहिए आपकी इच्छा। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, और सदाशिव का मतलब सदा कल्याण, सदा कल्याण कृष्ण भक्ति है, और थोड़ा सा कल्याण जो है वो हो सकता है कि देव, वो रुद्र है। सदाशिव का अपना लोक है ऊपर, और वो सृष्टि को हाथ लगाते हैं, सिर्फ वो भगवान नहीं लगाता है प्रकृति को हाथ, सदाशिव लगाता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अब आपके प्रश्न उत्तर क्या है इस सेक्शन में उसको बता देना कल।
क्या नंबर श्लोक है भक्ति लता इसका?
हाँ मिला ना, हाँ इसमें तात्पर्य में ये पढ़ा है। गुरु प्रसारे पाए भक्ति लता बीज।